پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی لے کر یاسمین جمیل حاضر ہے. ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر ڈین کرافٹن. ہمارا یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر, اور دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر اور اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر, جس کا لنک دستیاب ہے, اور وہ لنک ہے facebook.com/voaurdu. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں امریکی ریاست میری لینڈ کی ایک پاکستانی امریکی خاتون اور ایک انٹرپرینیور, ایک سماجی اور سیاسی سرگرم کارکن جو میری لینڈ کی ویسٹ بالٹیمور کاؤنٹی کے لیے اسٹیٹ ڈیلیگیٹ کا انتخاب لڑ رہی ہیں. اس وقت موجود ہیں میری لینڈ سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. نام ہے ان کا عائشہ خان. السلام علیکم عائشہ خان.
السلام علیکم.
بے حد شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. اور پروگرام شروع کرتے ہیں, اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ نے میری لینڈ کی ریاستی سیاست میں کیسے قدم رکھا اور کیسے یہ خیال آیا کہ اسٹیٹ ڈیلیگیٹ کا انتخاب لڑیں, ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ اسٹیٹ ڈیلیگیٹس کون ہوتے ہیں اور ریاست ایوان زیریں یا ریاستی قانون ساز اسمبلی کے لیے ان کے انتخاب کا طریقہ کیا ہوتا ہے.
جی ضرور یاسمین, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے آج بولنے کا موقع دیا. پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں بتانا چاہوں گی, پہلے میں اپنا انٹروڈیوس کرنا چاہتی ہوں. میرا نام عائشہ خان ہے اینڈ آئی ایم اے ریزیڈنٹ آف بالٹیمور کاؤنٹی میری لینڈ. میں میرڈ ہوں اور آئی ہیو 3 بیوٹیفل چلڈرن. آئی ایم اے ایجوکیٹر اینڈ اون اے چائلڈ کیئر لرننگ سینٹر. آئی ایم ایکٹیولی انوالوڈ ان لوکل پولیٹیکل اینڈ سوشل ارینا. I am running for House of Delegate. میں ہاؤس آف ڈیلیگیٹ کے لیے اسٹیٹ میریلینڈ سے ڈسٹرکٹ 44B سے رن کر رہی ہوں. اینڈ آئی ایم اے فرسٹ مسلم وومن ساؤتھ ایشین اینڈ پاکستانی ہو ہیز فائلڈ ٹو رن فار پبلک آفس ان میریلینڈ.
واہ, تو پہلی پاکستانی امریکی خاتون ہیں اور آپ پہلی مسلمان خاتون ہیں میریلینڈ کی جو کہ ڈیلیگیٹ کا انتخاب لڑ رہی ہیں. اس سے پہلے مرد پاکستانی امریکی اور مرد مسلمان تو لڑ چکے ہیں, لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ خاتون ابھی تک کوئی ایسی نہیں تھیں جو ڈیلیگیٹ کا انتخاب لڑ رہی ہوں, اور آپ پہلی خاتون ہیں. تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں, اور ہم اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں کہ آپ کو خدا تعالیٰ کامیابی عطا کرے اور آپ ڈیلیگیٹ منتخب بھی ہو جائیں. تو اب بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ یہ ڈیلیگیٹس کون ہوتے ہیں اور پاکستان کے اعتبار سے ان کا سیاسی عہدہ کیا ہوتا ہے.
ڈیلیگیٹ پوزیشن ایسی ہوتی ہے جیسے صوبائی اسمبلی, جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں صوبائی اسمبلی ہوتی ہے, ہو ریپرزینٹ دیئر کمیونٹی اینڈ میک لاز, کہ جیسے وہ اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور قانون بناتے ہیں.
اچھا, تو یہ ان کے انتخاب کا طریقہ کیا ہوتا ہے, کس طرح ڈفرینٹ ہوتا ہے پاکستان سے؟
میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اسی طرح جیسے پاکستان میں ہوتا ہے پالیٹکس سیم ہے جیسے پاکستان میں ہے, یہاں پہ بھی ہے. پالیٹیشنز آر ڈفرینٹ, یہاں پہ بھی جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ اپنی مہم چلاتے ہیں اور فنڈ ریزر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ڈور ناکنگ کرتے ہیں, کینوسنگ کی جاتی ہے, فلائر چھپے جاتے ہیں, گھر گھر جا کے ہم لوگ, میری پوری ٹیم ہے, والنٹیئرز ہیں, ایڈوائزری ٹیم ہے, کمپین مینیجر اور ساتھ میں کمیونیکیشن ڈائریکٹر, اس ہول ٹیم اور بہت سارے لوگ میری مہم اس مہم میں میری جو میری یہ مہم چل رہی ہے اس میں وہ حصہ لے رہے ہیں. تو ہم لوگ لوگوں کو بتاتے ہیں تھرو سوشل میڈیا, تھرو فیس بک, بہت سارے میری ویب سائٹ, بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جس سے کینڈیڈیٹ لوگوں تک رسائی کرتے ہیں.
اچھا, تو کتنے سال کے لیے یہ ڈیلیگیٹس منتخب ہوتے ہیں, اور اس ڈیلیگیٹس کے انتخاب کے ساتھ ساتھ اور کن کن سیاسی عہدوں کا انتخاب ہوتا ہے؟
جی ہاں, یہ 4 سال کے لیے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, اسپیشلی میں اپنی اسٹیٹ کی بات کروں گی میری لینڈ کے بارے میں. میری لینڈ کے اس وقت ٹوٹل جو ہیں 141 ڈیلیگیٹس ہیں, اور اس میں سے ڈیموکریٹس جو ہیں وہ 91 ہیں اور ریپبلکن 50 ہیں. سو بیسیکلی یہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے, اسپیشلی میری لینڈ کی میں بات کر رہی ہوں. تو اس میں جیسے میری لینڈ ہاؤس آف ڈیلیگیٹس ہوتا ہے اور میری لینڈ جنرل اسمبلی ہوتا ہے. تو اس میں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ 4 سال کے لیے منتخب کیا جاتے ہیں اور پھر 4 سال کے بعد دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں. یہ کونسل کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ جنرل الیکشن جو ہے میریلینڈ میں وہ نومبر میں ہے, لیکن جو ارلی ووٹنگ ڈے ہے وہ ہے جون 26.
تو اس وقت آپ اس جون 26 کے لیے آپ انتخابی مہم چلا رہی ہیں.
اچھا, جی ہاں.
تو آپ کا جو حلقہ ہے بالٹیمور کا 44B ہے, تو اس میں کتنی نشستیں ہیں آپ کے حلقے میں اور کتنے امیدوار آپ کے ساتھ مقابلے میں ہیں؟
اس میرے حلقے میں 2 نشستیں ہیں اور ہم ٹوٹل 5 ہیں. جو آلریڈی 2 منتخب ہو چکے ہیں وہ دوبارہ سے رن کر رہے ہیں اور ان کے علاوہ 3 ہو رہے ہیں, تو ٹوٹل ہم لوگ 5 ہیں. اور ہم 5 کے 5 جو ہیں ڈیموکریٹک ہیں, ان ہم 5 میں سے کوئی بھی ریپبلکن نہیں ہے.
اچھا,
تو اس لیے ہمارا فیصلہ پرائمریز میں ہی ہو جائے گا کیونکہ دوسرا کوئی ریپبلکن ہے نہیں.
ہے نہیں. تو اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب میں آپ واحد خاتون ہیں.
جی ہاں,
باقی سب جو ہیں وہ مرد ہیں جو آپ کے مقابلے میں ہیں. اور آپ نہ صرف یہ کہ واحد خاتون ہیں بلکہ واحد پاکستانی امریکی بھی ہیں اور واحد مسلم خاتون بھی ہیں. ٹھیک,
جی بالکل.
تو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ امریکہ میں جو انتخاب لڑنے کا جو اور انتخابی مہم چلانے کا طریقہ ہے, پاکستان کی جو انتخابی مہم ہوتی ہے ان سے کس طرح مختلف ہے اور کس طرح اسی جیسا ہے؟
بہت زیادہ تو مختلف میں نہیں کہہ سکتی. وہاں پہ یہاں پہ بھی ہمیں فنڈ ریزر کرنے پڑتے ہیں, ہمیں لوگوں کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے, پبلک سپورٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. بغیر پبلک سپورٹ کے ہم اس کو رن نہیں کر سکتے, یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ کتنا ڈفرینٹ ہے, یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ بالکل ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ مختلف ہے وہاں سے. یہاں پہ ہمیں اپنے پیسے سے زیادہ ہمیں پبلک سے پیسہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے, اور وہی پیسے جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں وہ ہماری کمپین پہ لگائے جاتے ہیں.
اچھا, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر پاکستان کی طرح جو امیدوار ہیں انتخابات میں اپنا ذاتی پیسہ قانونی طور پر خرچ نہیں کر سکتے؟
نہیں, اس لیے کہ ہمیں الیکشن کمیشن کو حساب دینا ہوتا ہے ہر بات, ہر چیز کا, ایک ایک ڈالر کا حساب ہمیں الیکشن کمیشن کو دینا ہوتا ہے.
اچھا, تو اور یہ آپ کے لیے قانونی طور پر جائز ہے کہ آپ جو فنڈز اپنی انتخابی مہم پر خرچ کریں وہ آپ کے سپورٹرز اکٹھے کریں, وہ آپ کے حامی آپ کو دیں؟
جی بالکل.
تو اس کے لیے پھر آپ لوگ یہ فنڈ ریزنگ کی ایونٹس کرتی ہیں یا کرتے ہیں؟
جی بالکل, ہم لوگ پھر سب کینڈیڈیٹ جو ہیں فنڈ ریزر کرتے ہیں تاکہ ہم یہ بتا سکیں. پھر ہماری رپورٹنگ کی جاتی ہے, کوارٹرلی ہماری رپورٹنگ ہوتی ہے جو پبلک ریکارڈ ہوتا ہے, جہاں پہ جو جو لوگ ہمیں ہماری کیمپین میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ڈونیٹ کرتے ہیں ان کا سب حساب ہوتا ہے جو کہ پبلک ریکارڈ میں ہوتا ہے.
اچھا, اور تو اس کا مطلب کہ اور یہ کتنے فنڈس تک آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ کم سے کم اتنے فنڈز اکٹھے کریں تو پھر آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ کوئی خاص حد ہوتی ہے؟
ایکچولی ہر ڈسٹرکٹ اور ہر کینڈیڈیٹ کا اپنا جو ڈیلیگیٹس کا ہوتا ہے, ہمیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سی ڈسٹرکٹ سے رن کر رہے ہیں. تو اب میرے ڈسٹرکٹ میں مجھے جیسے 50 to 60,000 مجھے ریز کرنے ہیں. ضروری نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ اتنی لمٹ تک نہ پہنچیں تو آپ ہار جائیں گی یا کچھ ایسا ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مجھے پبلک کتنا سپورٹ کر رہی ہے.
اچھا,
تو اس چیز کے لیے اور کمپین کو کامیاب بنانے کے لیے یہ فنڈ ریزر کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں ہر کینڈیڈیٹ کے لیے.
اچھا, اور فنڈ ریزنگ کے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے سپورٹرز اپنے گھروں میں کرتے ہیں یا کہیں کھلی جگہوں پر کرتے ہیں؟ کہاں کہاں یہ ایونٹس ہوتے ہیں فنڈ ریزنگ کے؟
آپ نے بالکل ٹھیک بتایا, جو میرے سپورٹرز ہیں وہ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں, اور ریسٹورینٹ وغیرہ میں بھی ہم لوگ ایسے فنڈ ریزر کرتے ہیں. کسی بھی طرح کہیں پہ بھی, موسٹلی جو ہیں ریسٹورینٹس اور گھروں میں کیے جاتے ہیں.
اچھا, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ایونٹ میں کتنے پیسے اکٹھے ہو گئے, لیکن پھر وہ فنڈ جو ہیں کن کن مدوں پر خرچ ہوتے ہیں؟ پاکستان میں تو یہ کہ جو انتخابی مہمیں ہوتی ہیں ان میں کھانے پکانے دیگیں وغیرہ کافی ہوتی ہیں اور کھانا پینا بھی چلتا ہے, تو آپ کے جو فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں وہ کیا ان کے لیے جو ڈنرز ہیں ان پر بھی خرچ ہوتے ہیں یا صرف آپ کی انتخابی مہم کے فلائرز وغیرہ پر خرچ ہوتے ہیں؟
नहीं कर सकते हैं आप खाने वगैरह पे, लेकिन हमारा जो मेन कंसंट्रेशन होती है वो ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे मुहिम पे लगाएं कि हम लोग फ्लैट्स कैसे बना सकते हैं, फिर क्योंकि हमें फ्लैट्स बनाने पड़ते हैं, फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमें मेलर भेजना होता है जो घर घर भेजा जाता है, जो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि मेरे मेरे क्या गोल्स हैं, मेरा क्या विजन है, मैं क्या करना चाहती हूँ,
हाँ
मैं क्यों लड़ना चाह रही हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए क्या करना चाह रही हूँ,
हाँ
किस वजह से, वो सारी इंफॉर्मेशन मेरी होती है जो घर घर में भेजे जाते हैं, और उसमें भेजने के लिए पैसों की जरूरत होती है क्योंकि हमें उसके पास स्टैंप लगती है, हमें भेजना होता है, इसके अलावा बड़े बड़े साइन बोर्ड्स बनते हैं उस पर भी हमें पैसे चाहिए होते हैं। कैंपेन को कामयाब करने के लिए बहुत ज्यादा, इसीलिए हमें एक एक हमें लिमिट दी जाती है कि आप मैक्सिमम करें ताकि जितने ज्यादा पैसे कलेक्ट होते हैं उतनी अच्छे से हम लोग अपनी मुहिम को चला सकते हैं।
अच्छा, तो इस वक्त हम अपने सुनने वालों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो फेसबुक पर हमारा ये प्रोग्राम जो है लाइव स्ट्रीमिंग इस वक्त हो रही है और सुन रहे हैं। और उनके थोड़े से नाम मैं ले लेती हूँ। ख्वाजा इकबाल हैं, बशीर खान हैं, GM नाइक हैं और हयात राही हैं। इन्होंने आपसे एक सवाल इस वक्त पूछा है कि क्या अमरीका में भी पाकिस्तान की तरह ख़वातीन की मखसूस नशस्तें होती हैं असम्बलियों में?
नहीं, मखसूस तो नहीं होती है, मतलब इट्स ओपन फॉर एवरीवन, कोई भी कैंडिडेट जो है इसके लिए रन कर सकता है।
अच्छा, लेकिन ये नहीं कि मखसूस नशिस्तें हों जिसमें खवातीन।
मखसूस नहीं, इट्स ओपन,
अच्छा
एनीबॉडी कैन कैन रन फॉर दैट।
अच्छा और आपने कहा कि अभी बात जो कर रही थी कि जो फंड्स वो इकट्ठे होते हैं उनका बाकायदा पब्लिक जो कमीशन है आपका, इलेक्शन कमीशन, वहाँ उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और
जी हाँ, बिल्कुल।
अच्छा, तो जिस वक्त ये इलेक्शन हो रहे होते हैं डेलीगेट्स के लिए और ये मुंतखब हो जाते हैं, तो उसके बाद उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं? क्या उनकी जिम्मेदारियां पाकिस्तान के डेलीगेट्स या अराकीन असम्बली से थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं?
देखिए, वो सबसे पहले तो वो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने हलके को, अपनी कम्युनिटी को। उनकी मेन हमारी मेन कंसंट्रेशन ये होती है कि हमारी कम्युनिटी के लिए क्या अच्छा है। मतलब जैसे अब मैं अपनी कम्युनिटी को कहती हूँ कि मैं आपकी आपकी मैं आवाज हूँ, क्योंकि जो लोकल कम्युनिटीज हैं ये अपनी आवाज या अपने प्रॉब्लम्स और अपने इश्यूज को एवाने बाला तक नहीं लेके जा सकते, तो वो हमारे थ्रू जाते हैं।
अच्छा
तो हम वो लोग हैं जो हम लोग कानून बनाते हैं, चेंज लाते हैं सिस्टम के अंदर,
हाँ
तो हमारा जो किरदार है वो बहुत अहम होता है माशरे में।
अच्छा, ये जो ऐवान ज़ेरी हैं या जो आप जिसको कह रही हैं कि रियासती असम्बली या जो पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियों की तरह होती हैं, उनमें उनमें भी सेनेट्स होती हैं अलग से, और उन
जी
सेनेट्स के
बिल्कुल,
और वो सेनेटर्स जो हैं उनका इंतखाब का तरीका भी यही होता है जैसे कि डेलीगेट्स का होता है?
बिल्कुल सेम तरीका होता है, हमारे भी सेनेटर्स होते हैं, और डिपेंड करता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। अगर बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो एक सेनेटर और तीन छह डेलीगेट्स होते हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक सेनेटर और हम दो डेलीगेट्स,
अच्छा
तो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा हल्का है, उसके हिसाब से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
अच्छा तो उनके और उनके इंतखाबात भी इसी तरह पब्लिक में होते हैं जिस तरह के आपके होते
जी
हैं?
बिल्कुल
अच्छा,
बिल्कुल जी,
तो जब और वो जब सेनेटर्स जो होते हैं, आपने प्रोग्राम से पहले बताया था कि आप जो ऐवान ज़ेरी हैं और ऐवान बाला जो हैं उनके कोई टीम बनती है जो मिलकर काम करते हैं सेनेटर्स?
जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई लाल मतलब कोई बिल लेके आए हैं, उस बिल पे काम करना है, तो वो फिर सब डेलीगेट से होता हुआ, सेनेटर से होता हुआ, फिर वो एक प्रोसेस है जिससे वो गुजरता हुआ आगे जाता है। तो लेकिन ये सेम थिंग अभी जैसे इलेक्शन होंगे तो वो सेनेटर्स के लिए भी होंगे, काउंसिल के लिए, सबके लिए होंगे। हमारी स्टेट में, अपनी स्टेट मैरीलैंड की बात कर रही हूँ
हाँ,
मैं, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग टाइम होता है,
अच्छा
तो मैरीलैंड का जो है उनका इसका टाइम, अभी प्राइमरीज जो है वो जून 14 से शुरू हो जाएंगे, प्राइमरीज अर्ली वोटिंग डे फर्स्ट डे, अर्ली वोटिंग डे फर्स्ट डे इसको जून 14, और फिर जून 26 जो है ऐसा प्राइमरी इलेक्शन डे।
अच्छा, तो उस वक्त फिर आपको और कितने हलके हैं, कितने टाउन्स हैं जहाँ ये, और कितने पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पर ये इंतखाबात होंगे आपके हलके में?
जी, मेरे हल्के में टोटल 18 प्रीसिंक्ट्स हैं, और जैसे हम कह लें कि पोलिंग स्टेशन जैसे कहते हैं, तो वो टोटल 18 है, 18।
अच्छा, तो 18 टाउन्स में ये इंतखाबात होंगे जिसमें वो मुंतखब करेंगे दो नुमाइंदे या दो
उम्मीदवार
डेलीगेट्स
जी।
मैरीलैंड के इस हल्के के लिए जिसमें जिससे आप 44B जिससे आप इंतखाब लड़ रही हैं। तो
जी
बेहद शुक्रिया
बिल्कुल
आयशा खान, हमारी गुफ्तगू अभी जारी है लेकिन एक ब्रेक ले
जी
लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आपसे कि भैया आप कैसे सियासी ज़िंदगी में आपने शमूलियत अख्तियार की, तो ये कहानी आपसे सुनेंगे लेकिन पहले एक ब्रेक। हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमेरात को नशर होने वाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ते हुए कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत अमरीका का दौरा करने वाले मुमताज पाकिस्तानियों से। ये प्रोग्राम नशर होता है पाकिस्तान में हमारे सुनने वालों के लिए हर जुमेरात को रात 9 से 9:30 बजे तक रेडियो पर मीडियम वेव 972 पर और इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। पेशकश यास्मीन जमील जी, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से हरदम रवा है ज़िंदगी। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर आज हम गुफ्तगू कर रही हैं अमरीकी रियासत मैरीलैंड की एक पाकिस्तानी अमरीकी खातून और एक एंटरप्रेन्योर, एक समाजी और सियासी सरगर्म कारकुन जो मैरीलैंड की वेस्ट बाल्टीमोर काउंटी के लिए स्टेट डेलीगेट का इंतखाब लड़ रही हैं, और उनका कहना है कि वो पहली पाकिस्तानी अमरीकी खातून हैं और पहली मुसलमान खातून हैं जो रियासत मैरीलैंड से डेलीगेट का इंतखाब लड़ रही हैं। टेलीफोन पर मौजूद हैं हमारे साथ मैरीलैंड से, और इससे पहले कि हम उनसे गुफ्तगू शुरू करें हम शुक्रिया अदा करेंगे फेसबुक पर अपने उन तमाम करम फरमाओं का जिस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सुन रहे हैं। और प्रिंस नवीद हैं हमारे साथ, हबीब खान हैं, मोहम्मद खान हैं, एहसानुल्ला बुज़दार हैं, एहसानुल्ला बुज़दार ने दो दफ़ा अपना लाइक किया है, शेख तनवीर हैं और अनवार अली हैं और शौकत मलिक हैं, जहां जेब हैं, इश्तियाक वानी हैं, उन्होंने हैप्पी वेमेंस डे कहा है हमें भी और आयशा को भी, और ख्वाजा इकबाल हैं, और इन्होंने इंडियन कश्मीर से हमें प्रोग्राम को पसंद किया है, बशीर खान हैं और जी एम मलिक का हमने जिक्र किया, और अब्दुल वहीद हैं, जसबीर जैसी हैं, और मोहम्मद आरिफ हैं, और चक परवेज सुल्तान चक हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और उन लोगों का भी जो कमेंट्स नहीं पास कर रहे या लाइक नहीं कर रहे लेकिन प्रोग्राम को सुन रहे हैं। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। आयशा खान साहबा, आप सुनाइए हमारे सुनने वालों को ये कहानी कि एक पाकिस्तानी अमरीकी खातून को जिसका ताल्लुक पेशावर के किसी खैबर पख्तूनख्वा से था और जिनके घराने में कभी किसी खातून ने कम अज़ कम वालदा ने तो तालीम नहीं हासिल की थी स्कूलों में या कॉलेजों में, लेकिन उन्होंने न सिर्फ अमरीका आकर तालीम हासिल की और वहाँ भी तालीम हासिल की बल्कि यहाँ आकर इतनी नुमाया होकर सामने आई कि अब एक रियासती इंतखाबात में शमूलियत का फ़ैसला कर लिया, तो कैसे ख्याल आया और कैसे तैयारी की थी इस मंजिल तक पहुँचने की?
यास्मीन, मैं ये कहूँगी कि हर काम अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी। मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी। मैं अपनी बेटी के लिए, मेरी जो मेरी 8 साल की बेटी है, मैं अपनी बेटी के लिए एक मिसाली माँ बनना चाहती थी। मेरा ताल्लुक पेशावर से है और आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे औरतों के लिए मतलब इतनी आज़ादी नहीं की जाती है जैसा कि हम लोग सोचते हैं, लेकिन मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया है, और ये सब कुछ मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड और मेरे फ्रेंड्स को इसका जाता है चला, क्योंकि ये इन्हीं की वजह से मैं जो कुछ भी हूँ मैं आज हूँ।
अच्छा,
मुझे ये ख्याल इसलिए आया कि देखिए यास्मीन, हम लोग बहुत शिकायतें करते हैं सिस्टम के बारे में, तब्दीली के बारे में कि सिस्टम ऐसा है वैसा है, लेकिन हम लोग उसके सलूशन के बारे में नहीं सोचते कि इसका हल क्या हो सकता है। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं नए सिस्टम के अंदर चेंज लाऊंगी और मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं सिस्टम में किस तरह से सिस्टम को चेंज कर सकती हूँ। मैं मेरी बेटी, पहले वो मुझे कहती थी कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, अब उसकी सोच चेंज की है, मेरी वजह से शायद उसकी सोच ही चेंज हुई है, और अब वो कहती है कि आई वांट टू बी अ पॉलिटिशियन लाइक यू मम्मी। सो दिस इज अ बिग थिंग कि मैंने अपने घर से एक तब्दीली में लेके आई हूँ. इसके अलावा मैं एक बिजनेस ऑनर हूँ. मैं अपना चाइल्ड केयर लर्निंग सेंटर चला रही हूँ अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, और एक ऑर्गेनाइजेशन है मेरी NCWE, नेशनल सेंटर फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. मैं इसके बारे में भी थोड़ा आपको बताना चाहूँगी कि एक ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है उन औरतों के लिए जो अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो कहाँ जाएं, कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकती हैं और कैसे वो अपना एक स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकती हैं. उनको ग्रांट्स जो कि हमें स्टेट और काउंटी की तरफ से उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कहाँ जाएं क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो अपना एक स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकती हैं और हम उनको मालूमात फराहम कर सकते हैं.
अच्छा, तो ये अमेरिका भर से कोई भी खातून, चाहे वो किसी भी नस्ल की हो, किसी भी कौमियत की हो, वो आपके इस प्लेटफॉर्म से बिजनेस करने के उसूल सीख सकती है या आप उसकी रहनुमाई कर सकती हैं.
जी हाँ बिल्कुल.
अच्छा, तो अब आप क्या देख रही हैं कि रियासत मेरीलैंड का जो सियासी माहौल है किस तरह बाकी रियासतों से मुख्तलिफ है, और यहाँ पाकिस्तानी अमरीकी या जनूबी एशिया के लोगों का क्या तनासुब है, और अगर यहाँ पर पाकिस्तानी और जनूबी एशिया के लोग मौजूद हैं तो उनका क्या फीडबैक है आपके लिए, किस तरह वो आपके साथ काम कर रहे हैं?
I am very excited and humbled for the support that I have received from local community. जो मेरी local community है जो मुझे support कर रहे हैं, और यास्मीन यही support मुझे encourage करता है कि मैंने बहुत सही फैसला किया था कि मैं सियासत में आऊँ और लोगों के लिए एक मिसाल बनूँ. क्योंकि मैं सबको ये बात कहती हूँ कि अगर मैं रन कर सकती हूँ तो आपकी बहन, आपकी बेटी भी रन कर सकती है ऑफिस के लिए. क्योंकि हमने अब नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे आने वाली नस्ल है उनके लिए हमने एक रास्ता बनाना है, जो मैं कर रही हूँ.
तो ये आप समझती हैं कि जो पाकिस्तानी अमरीकी हैं और जो मुस्लिम हैं उनकी सपोर्ट तो आपको है ही है, ज़ाहिर है कि पहली आप पाकिस्तानी अमरीकी खातून हैं, पहली मुसलमान हैं, तो बाकी कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वो किस हद तक आपके साथ आ रहे हैं, और क्या आपकी बुनियाद क्या है, आप अपनी कैंपेन के मेन इश्यूज़ आपके क्या सामने रखे हुए हैं आपने?
जी हाँ, दूसरी जो मेरे बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं सब मुझे बहुत इंकरेज कर रहे हैं, क्योंकि एज अ वोमेन वो मुझे इस चीज़ को इंकरेज कर रहे हैं कि एज अ वोमेन, एज अ मदर, एज अ वाइफ, यू आर रनिंग फॉर ऑफिस एंड इज अ बिग अचीवमेंट. तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की. और मेरे जो गोल्स हैं वो एजुकेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट. और जो एजुकेशन है लाइक सेफ स्कूल, स्कूल सिस्टम के हम अपने स्कूल्स को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, और जो लोकल इकॉनमी है सपोर्टिंग बाय सपोर्टिंग द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, माइनॉरिटी बिजनेसेस पीपल एंड ऑल लोकल बिजनेसेस दैट अपहोल्ड आवर कम्युनिटीज. तो मैं इसके बारे में भी और मजीद आपको बताना चाहूँगी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट के बारे में. क्योंकि देखिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट है स्पेशली जो यूथ है, जो हमें यूथ के लिए आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स लाइक जैसे क्लब्स हो गए, आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स हों ताकि ये किसी किसी जगह पे एंगेज रहें, वॉलंटियर काम कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं सेम टाइम. ये इंस्टेड के अपना टाइम वेस्ट करें, बाहर घूमें फिरें या डिवाइसेस पे अपना
तो उनके लिए आप एक तरह से ये चाहेंगी कि उनको रोजगार के मौके फराहम करने के लिए या उनको एंगेज करने के लिए आप कोई ना कोई उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म मुहैया करें. अच्छा, एक सवाल शोएब, एक 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 सवाल शोएब हसन निहालका ने फेसबुक पर आपके लिए पोस्ट किया कि क्या अमरीकी इंतखाबात जो हैं उनमें भी वडेरों की सियासत चलती है या कोई बरादरी सिस्टम भी है या वोटिंग में जैसे कि पाकिस्तान में कहीं कहीं होता है?
नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं.
अच्छा,
यहाँ पे बहुत शफाफ इंतखाबात किए जाते हैं. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें एक 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 पाई का हिसाब इलेक्शन कमीशन को देना होता है.
तौसीफ शौकी ने आपसे पूछा है फेसबुक पर कि आप क्या समझती हैं कि आप इसी फील्ड में आना चाहती थी जिसमें आप पहुंच गई हैं या आप किसी और फील्ड में जाना चाहती थी?
नहीं, मेरा शुरू से ये एक एम था कि मैं सियासत में आऊँ एज अ औरत, पाकिस्तानी मुसलमान औरत, जबकि मैंने हिम्मत की और मैं आई हूँ. और इंशाल्लाह मैं बहुत, मेरे हाई होप्स हैं कि इंशाल्लाह आई कैन ग्रैब दिस सीट.
और ये सवाल भी आपके लिए पोस्ट किया गया कि आपको यहाँ तक पहुँचाने में कौन आपका सबसे ज़्यादा साथी था या जिसने आपको यहाँ पर आने पर आपकी हौसला अफजाई की?
मेरे हस्बैंड.
तो हस्बैंड खुद सियासत में नहीं आए लेकिन अपनी बेगम को इजाजत दे दी कि वो.
जी हाँ, मैं उनके बारे में भी थोड़ा आपको बताना चाहूंगी क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो बाय लॉ उनको अपनी जॉब से रिजाइन करना पड़ता और फिर वो इस पोजीशन के लिए रन कर सकते थे.
अच्छा अच्छा.
और क्योंकि उनकी 20+ ईयर्स की सर्विस है फेडरल गवर्नमेंट की, तो हम लोग ऐसा वो चाहते नहीं थे, इसीलिए उन्होंने मुझे इंकरेज किया. और मुझे शौक भी बहुत ज़्यादा था, मैं लोगों की मदद करना चाहती थी, अपनी कम्युनिटी की मदद करना चाहती थी. और ये इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता कि अगर मैं इस तरह से इलेक्ट होके उनकी आवाज़ बनूँ और उनकी मदद कर सकूँ अपनी कम्युनिटी की.
एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे वो भी आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं, तो उनको भी हम अपने साथ शामिल करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब?
जी मैं सैयद अजीज हुसैन शाह एडवोकेट रावलापुर कश्मीर से बोल रहा हूँ.
जी जी आपका सवाल.
तो इनको मुबारकबाद दे दें और यास्मीन जमील आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. तो इनसे मेरा सवाल ये है कि ये कामयाब होने के बाद हमारे मेबरान की तरह मुख्तलिफ रियासतों में इनके भी मकान बन जाएंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी, बहुत सारा बैंक बैलेंस हो जाएगा और बहुत सारी पार्किंग.
जी आप समझ गई, आप
चलने फिरने का अंदाज बदल जाएगा या ऐसा ही रहेगा?
जी आयशा खान बताइए इनके सवाल का जवाब.
जरूर, शुक्रिया आपके सवाल का. ऐसा हरगिज नहीं है, यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल आम लोगों के जैसे होते हैं. और ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत ज्यादा हमें हमारी बहुत हाई सैलरीज हैं, ऐसा भी नहीं है. हम लोग बिल्कुल, मैं वैसे ही बहुत हम्बल हूँ और मैं जैसी हूँ मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी. लेकिन यहाँ पे सियासत में ये फर्क है पाकिस्तान और यहाँ की सियासत में कि वहाँ के लोग जब इलेक्ट हो जाते हैं तो वो कुछ अपने आप को समझने लगते हैं. लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो हम जो मोस्टली लोगों को मैंने देखा है जो अभी भी हैं डेलीगेट्स जिनको मैं जानती हूँ, वो बहुत ही हम्बल और बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं.
और
आपको तरक्की देगा, बहुत कामयाबियां देगा खातिन के दिन.
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया.
अच्छा और एक वजह ये भी है कि आप हमारी आयशा खान न सिर्फ ये कि इलेक्शन लड़ रही हैं लेकिन वो अपने जाती तौर पर भी अपने पाँव पर खड़ी हैं और एक डे केयर सेंटर चला रही हैं जो इनका एक छोटा सा कारोबार है और ये इन्होंने अपने घर से शुरू किया था और अब काफ़ी इनको बढ़ा लिया. तो बताइए ये आयशा खान के कैसे मैनेज करती हैं डे केयर सेंटर, और ये जो आपका सेंटर है अमरीका में जो दूसरे डे केयर सेंटर्स हैं वो किस तरह उनसे मुख्तलिफ है?
अच्छा मैंने घर से ये शुरू किया था और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लर्निंग सेंटर है और ऑलमोस्ट 90-100 बच्चों का मेरे पास कैपेसिटी है यहाँ पे. और मुख्तलिफ ऐसा है कि मेरे पास देखिए एक ये भी एक मैं कम्युनिटी के लिए जो काम कर रही हूँ, जो मेरा लर्निंग सेंटर है, जो प्री स्कूल है, जो हम बच्चों को तैयार करते हैं स्कूल के लिए, यहाँ पे पूरा करिकुलम और एक उनका एक पूरा एक स्केड्यूल होता है जिसके मुताबिक बच्चे क्लासरूम्स को में फॉलो करते हैं. और डिफरेंट ये है कि देखिए मैं किस तरह से इसको मैनेज करती हूँ. मैं जब मैंने अपने टाइम को डिवाइड किया हुआ है, जैसे मैं अब सुबह अपने ऑफिस में आती हूँ तो फिर मैं अपनी कैंपेन के बारे में नहीं सोचती, घर सब चीज़ें नहीं, जस्ट मैं अपने कारोबार के बारे में कॉन्सेंट्रेट करती हूँ. फिर जब मैं यहाँ से निकल के घर जाती हूँ तो वो टाइम सिर्फ मेरा फैमिली टाइम होता है, शाम को मेरा कैंपेन टाइम होता है. तो मैंने अपना एक स्केड्यूल बनाया हुआ है और मैं अपने स्केड्यूल के सस्टेक रहती हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेरी वेल.
और इसी तरह जो दूसरी पाकिस्तानी अमरीकी खवातीन ही नहीं बल्कि यहाँ पर जो जितनी भी खवातीन हैं वो इसी तरह अपना टाइम मैनेज करती हैं, वो मुलाजमत भी करती हैं, वो कारोबार भी करती हैं, घर भी चलाती हैं. और आयशा खान की तरह घर के खाने अपने वीकेंड पर अपने बच्चों के लिए खाने भी बनाती हैं और इनके बच्चे माशाल्लाह बताइए ना कि कितनी पोजीशनें ले रहे हैं.
बिल्कुल, मेरे 3 बच्चे हैं. मेरा बड़ा बेटा आयान वो 11 साल के हैं और मेरी बेटी आयशा खान शी इज 8 years old और मैं यंगेस्ट वन ही इज जस्ट 3. और मेरे बच्चे जो हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑनर रोल स्टूडेंट्स हैं. मेरी सियासत और मेरा कारोबार इसके साथ मेरी फैमिली पे कोई इफेक्ट नहीं आया, होने दिया मैंने अब तक और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी नहीं होगा.
बेहद शुक्रिया.
मेरे हाथ
بہت شکریہ، بہت شکریہ عائشہ خان، ہمارے پروگرام کو اب سمیٹنے کا وقت ہوا اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام کو سمیٹتے ہیں. اور ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر آج ہم نے آپ کی ملاقات کرائی امریکی ریاست میری لینڈ کی ایک پاکستانی امریکی خاتون اور ایک انٹرپرینیور، ایک سماجی اور سیاسی سرگرم کارکن عائشہ خان، جو میری لینڈ کی ویسٹ بالٹیمور کاؤنٹی کے لیے اسٹیٹ ڈیلیگیٹ کا انتخاب لڑ رہی ہیں. ہمارے ساتھ میری لینڈ سے ٹیلی فون پر موجود تھیں، اور ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے اسفر امام، انجینئر تھے ڈین کرافٹن. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.